ओम शांति। हम सभी का परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में आदरणीय मोहन भाई सिंघल जी उपस्थित हैं। आप 1962 से बाबा के ज्ञान में हैं और 1967 में आपने इंजीनियरिंग IIT से पास किया। साकार बाबा की पालना का आपको परम सौभाग्य मिला है और आप वह महान आत्माओं में से एक है जिन्होंने साकार बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखा है। भारत में आसाम, यूपी, पंजाब, बिहार में अनेक सेवा केंद्र खुलने के निमित्त आपको बाबा ने बनाया। साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन हैं और इस विंग के अंतर्गत आपने अनेक ऐसी सेवाएं की जिसके कारण आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड से आप नवाजे गए हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी से आज हम सुनेंगे ब्राह्मण जीवन में आंतरिक खुशी व रूहानी नशा। भाई सब
ओम शांति। वैसे तो समय प्रति समय बाबा की मुख्य 2 बातें सुनते ही रहते हैं जो बाबा ने पाठ पढ़ाए हैं। कौन से 2 विशेष पाठ पढ़ाए हैं? अचानक और एवर रेडी का। तो वैसे हमें टाइम मिला हुआ था कि आप 10 बजे आना है, तो हमने कहा ठीक है। उससे पहले अपने दूसरे कुछ काम निपटा रहे थे, फिर अभी 15 मिनट पहले ही बहन जी का फोन आया कि अभी आना है, क्योंकि फिर मुन्नी बहन जी भी आएंगे और सौगात सबको देंगे। तो नेचुरली अगर हर एक को प्रिफर करना हो लेक्चर और सौगात में से कौन सी चीज प्रिफर करेंगे, क्योंकि हम सब इस स्थूल दुनिया में रहते हैं तो स्थूल भी है और साथ साथ मुन्नी बहन जी से महावाक्य भी कुछ सुनने को मिलेंगे, इसीलिए और समय न लेकर के हमने कहा था ठीक है जितना भी होगा आपस में कुछ शेयर करेंगे और कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जो हम सब लोगों को जीवन में बहुत ही काम में आनी है। आज मुरली तो सबने बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी। संडे का दिन था तो आज बाबा ने काफी तो हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि आसान कैसे हो गया? बाबा ने कौन सा बोला, बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी का। तो खुशी के ऊपर बाबा ने बहुत काफी कुछ बताया भी, तो इसीलिए और तो इतना बताने का रहता नहीं, क्योंकि बाबा तो जाने जाननहार है। बाबा को मालूम है कि आज टाइम आधा होने वाला है, तो आधा लेक्चर तो बाबा ने ही ले लिया, ठीक है ना? तो ऐसे ही बाबा के हाथ में जब हमारी डोर रहती है तो हमारे काफी काम बाबा निपटा देता है। और वो काम जो है हम चाहे जैसे उल्टे सीधे करते, लेकिन बाबा तो परफेक्ट ही करता है। और वैसे तो समय प्रति समय बाबा ने अनेकों खजानों का वर्णन किया है। समय खजाना है, संकल्प खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियां आदि आदि बहुत खजानों का वर्णन किया है, लेकिन आज बड़े से बड़ा खजाना खुशी का कहा है। और खुशी का खजाना जो है वो बाबा ने क्या कहा है, वो खुशी का खजाना बांटते रहो, क्योंकि ये खुशी ऐसा खजाना है किसी कोई भी देखेगा हमारे तरफ और हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा, खुशी में देखेगा, तो बिना कुछ बोले भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी खुशी के वाइब्रेशंस, खुशी की फीलिंग वो सब आ जाएंगी। और वो ही हम सबका अल्टीमेट लक्ष्य है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हमें सतयुग तक ले जानी है, और ज्ञान का, गुणों का, दूसरे दूसरे खजाने तो सतयुग में ले नहीं जाएंगे, लेकिन खुशी का खजाना सतयुग तक साथ चलेगा। और वहाँ पर तो केवल सतयुग में नहीं, सतयुग त्रेता आधा कल्प तो रहेगा, बल्कि आधा कल्प क्या, बाबा ने तो कहा है कि तीन चौथाई कल्प भी, द्वापर युग में भी तुम बच्चों को कोई दुख नहीं होता। इसीलिए ये खजाना हमारा रिप्रेजेंट किन चीजों से होता है, बाबा ने इसमें क्या क्या बताया आज, किन किन चीजों से ये खजाना हमारा प्रत्यक्ष हो सकता है, और बाबा की भी प्रत्यक्षता हो सकती है। आज ही सुनी है ना मुरली, तो इसीलिए भूलने की तो बात इतनी जल्दी होती नहीं। तो देखो, बाबा ने कई बार पहले भी बताया है कि ये चेहरा आपका क्या है, म्यूजियम है। एक तो वो म्यूजियम होते हैं जो चित्र लगे रहते हैं, वहाँ जाओ किसी को समझाओ, लेकिन आपका चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम है। और चेहरे में मुख्य मुख्य क्या है, यही सब चीज है जो हम सबको देखने में आते हैं। तो बाबा ने एक ऊपर से लेकर बस नीचे तक बताया। अब याद आया मस्तक से क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए, हाँ हमारा क्या। वैसे तो हर एक का स्वरूप देखने में फिजिकल आता है, रंग रूप पर्सनैलिटी एक्सटर्नल वो सब, लेकिन बाबा ने कहा आपके मस्तक से आंतरिक, क्योंकि आज विशेष करके आंतरिक खुशी की बात है, तो आंतरिक स्वरूप मैं आत्मा हूँ, तो हमारा ऐसा हो जिससे दूसरे को भी देखें वैसा ही उसको महसूस हो। ब्रह्मा बाबा को भी यही हुआ, जब ब्रह्मा बाबा को ये अनुभव हुआ कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने जब ये पक्का कर लिया लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, सब पढ़ाई है आप लोगों ने, तो फिर बाबा जिसको भी देखता था और बस उसको तुरंत आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो जाता था। हमें तो प्रैक्टिकल इस बात का अनुभव है, क्योंकि 6-7 साल बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला, और बस बाबा के पास जाते थे, बाबा ऐसे ही हाथ फैला दे, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, आओ मीठी बच्ची, बस, और यूं करते थे, तो हम चुंबक की तरह जैसे खींचते हुए ना बाबा की बाहों में, कोई देह भान नहीं, कुछ भी देह की स्मृति नहीं, फिर वहां जाते ही एकदम विदेही हो जाते थे। तो मस्तक से जैसे नैनों से बाबा देखते थे, और जो बाबा कहते हैं नैनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हो, तो ऐसे ही बस बाबा नैनों से देखते थे, और हम लोग नैन में और भ्रकुटी वगैरह में देखते थे। और थोड़ा ये भी लक्ष्य रहता था, क्योंकि भाई ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, तो वो तो भ्रकुटी से भी पता चलेगा, तो कई बार हम लोगों का ध्यान बाबा की भ्रकुटी में भी रहता था। तो बस बाबा कहते थे आओ बच्चे, और हम खिंचाते थे, और उसके बाद विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, बिल्कुल देह का भान ही नहीं। अभी तो अशरीरी होने में फिर भी मेहनत लगती है, लेकिन तब तो साकार में तो ऐसा होता था कि बिल्कुल ये भान ही नहीं। उसके बाद थोड़े समय के लिए जब अशरीरी हो गए, फिर बाबा तब तो हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे, तो आने का मतलब कि कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ हो जाती थी, देह का भान ही भूल जाता था, खत्म हो जाता था, फिर बाबा कहता था आओ जैसे बच्चे। क्यों? क्योंकि एक को जाना था तो दूसरे को, पूरी पार्टी को मिलना होता था, तो हर एक को 1-2 मिनट से ज्यादा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो ये बात थी, जैसे आते थे फिर बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, थोड़ा बहुत कुछ पूछना हुआ पूछते थे। तो मैं तो मोटे तौर पर ही बताता हूँ, जब पहली बार मिले तो बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो मैंने बताया मेरा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे होता है ना, तो श्री और फिर सरनेम सिंगल वगैरह। तो बाबा ने पूछा तो हमने बताया, फिर बाबा ने क्या बोला बच्चे, फिर हमने थोड़ा और तेजी से बोला श्री। अच्छा श्री, वाह 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 वाह। तो बाबा तो बड़े ह्यूमरस स्वभाव के थे, रे रे आओ गंगे दादी, आओ प्रकाश, नहीं आओ, देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है। ऐसा हो सकता है? क्योंकि बाबा यंग के साथ यंग की तरह और बच्चों के साथ बच्चों की तरह, मेरी उम्र भी 16-17 साल की थी और तो मैं तो देखता रह गया कैसे बाबा कह रहे हैं। तो फिर बाबा ने बताया, देखो बच्चे अभी तो श्री टाइटल बाबा भी नहीं लगा सकता है, और क्योंकि श्री तो उसे कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं, श्रेष्ठ यानी जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। लक्ष्मी नारायण को श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, शरीर भी विकारों से पैदा नहीं हुआ और आत्मा भी पवित्र है, सर्वगुण संपन्न 16 कला। तो इस कारण से अभी तो किसी का भी शरीर और आत्मा पवित्र नहीं है, तो श्री नहीं तो बाबा अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन देता है। तो बस मोहन यानी कृष्ण, श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो श्री नाम तो वहाँ मिलेगा और यहाँ कृष्ण का नाम जैसे मोहन। तो बस इस तरीके से बाबा के सम्मुख जो भी बच्चा जाता था तो बाबा उसमें आध्यात्मिकता भर देते थे, जिससे उसे ये ख्याल न रहे, पुराने जन्म की विस्मृति हो जाए और जैसे आज से मेरा नया जन्म शुरू हुआ। अब जो आप लोग कहोगे, मोस्टली आप लोग तो साकार बाबा से मिले नहीं होंगे कि भाई बाबा ने तो हम लोगों से तो मिले नहीं, तो नाम चेंज नहीं हुआ। तो बाबा का भाव क्या होता था नाम चेंज का, कि हम पुरानी बातों को, इस देह से संबंधित बातों को भूल जाएं और जो आज से हमारा नया जन्म हुआ है संगम योगी, तो उस बात की स्मृति में रहें। तो पहली बात तो यहाँ से आज आप ये लेकर के जाएं कि भई हमारा नया जन्म है, भले बुलाने में पुराने में वो पुराना नाम ही आएगा, कहने में पासपोर्ट हो या सर्टिफिकेट हो आदि आदि, आधार कार्ड हो, लौकिक भले हो, लेकिन हमारी स्मृति में वो नाम हो जो कि संगम योगी और ज्ञान युक्त नाम भी हो, कर्म भी हो, हमारी भाषा भी हो, सब कुछ हमारा जैसे बदल जाए। तो मस्तक से जो है बाबा ने बताया ना, और नैनों से जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मस्तक से हमारे स्वरूप का यानी आत्मिक स्वरूप का। और फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ होठ है यानी कि मुख, और मुख से जैसे कि ना, मुख से तो ज्ञान दिया जाता है, तो मुख पे एक तो हमारी दैवी मुस्कान हो। बाबा हमेशा कहते थे बहुत तेजी से नहीं हंसना, देवताएं देखो मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराना हो वो हो, और मुख से जो वर्णन करो वो ईश्वरीय ज्ञान का वर्णन हो, ब्राह्मण सो देवता स्वरूप का वर्णन हो। और फिर हाथों से ईश्वरीय कार्यों की, सहज राज्यों के, उसमें सबकी स्मृति हो कि हम सब कर्म योगी हैं, और साथ ही साथ चरण, पैर होता है तो चरण कमल से क्या स्मृति आए, हाँ हमारे कदम कदम में पदम है, और वो ही स्मृति बाबा कहता है, इसीलिए कोई भी वेस्ट न हो, और फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें याद आता है, हम प्रयास करते हैं, खास करके जब फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का, सारे दिन में विशेष करके हम सुबह अमृत वेले के योग के समय जब क्लास में जाओ और शाम को जब योग में जाओ, तो ब्रह्मा बाबा टहलते थे आंगन में, तो बस हाथ पीछे करे हुए और बहुत धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते। तो एक बार वैसे ही हमने पूछा, बाबा ये क्योंकि नॉर्मल केस में जब बाबा घुमाने ले जाते थे तब तो बाबा फास्ट चलते थे बहुत है, हम लोग यंग होते हुए भी पीछे रह जाते थे कई बार, लेकिन जब बाबा अकेले ठहरते थे टहलते थे तो बस हाथ दोनों पीछे और बहुत धीरे इतना छोटा छोटा कदम। तो बाबा ने बताया था कि बच्चे ये फरिश्तों का वो है, जब भी बाबा को ना ये होता है कि मुझे फरिश्ता बनना है, हम अकेला बाबा हमेशा ऐसे ही बहुत धीरे धीरे धीरे। तो आप भी जैसे ही जब कभी मौका मिले तो ऐसे ही हाथ पीछे हो और थोड़ा हल्के हल्के चलें, तो स्वतः ही फरिश्तेपन की स्मृति आ जाएगी कि मैं फरिश्ता हूँ, इस देश से न्यारे हूँ और मैं बाबा मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना रहा है। तो ये स्मृति ही हमें एक तो खुशी में लाती रहेगी और इस स्मृति के साथ साथ बाबा तो यहाँ तक भी बोलता था खुशी इतनी रहे, कितनी रहे, एक्सट्रीम तक बाबा चला जाता था कि प्राण जाएं चले जाएं लेकिन खुशी न जाए। अब ऐसा कैसे हुआ, जब प्राण चले गए तब तो सभी कुछ ही चला गया। हाँ, भाव क्या है, खुशी ऐसी हो कि खुशी बढ़ती जाए, कंटिन्यूअस हो और इतने एक्सट्रीम, कोई भी शारीरिक कष्ट हो कोई भी बात हो लेकिन चेहरे पर दुख की फीलिंग ना आए। ऐसे बहुत उदाहरण हैं लेकिन वो तो बताने का समय नहीं है, लेकिन बाबा को भी ना कई बार जब बताया जाता था कई परिस्थितियों का वर्णन तो कुछ नहीं, बाबा के चेहरे पर तो वही मधुर मुस्कान रहा करती थी। और वैसा इसीलिए हर चीज में दुनिया में भी बोला जाता है भाई क्या चाहिए व्यक्ति को, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ और वेल्थ तो फिर भी, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वेल्थ के लिए भी बहुत लिटरेचर है कैसे वेल्दी बने, किस प्रकार से धन कमाया जाए आदि, लेकिन हैप्पीनेस का कुछ वो नहीं है क्योंकि हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। ये मन की एक कला है, मन का एक स्थिति है और वो हैप्पीनेस, ये जो है खास करके रूहानी खुशी, अंदरूनी खुशी जो है ये अंदर का जो है मन की बात। इसीलिए मन के लिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। क्यों, ये सारी की सारी बात, मन को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जैसे जीत लिया। और यही हमने अंतिम में भी बाबा का भी देखा कि मन हैप्पीनेस का भी इसीलिए वर्णन जो किया गया है बड़े साइंटिफिक वे में हैप्पीनेस का वर्णन किया गया है। हैप्पीनेस तो खुशी, आंतरिक खुशी कोई बहुत वे में कर सकते हैं, लेकिन जैसे साइंटिफिक फार्मूला होता है ना, ऐसे ही मन के लिए भी एक फार्मूला बनाया है वैज्ञानिकों ने, जैसे हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। अचीवमेंट्स माने प्राप्तियां, जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट, ऊपर न्यूमरेटर में अचीवमेंट्स हैं। तो जो भी हम चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई हमारे बच्चे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर हो जाता है तो मन में खुशी होती है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू दिस। लेकिन नीचे एक्सपेक्टेशंस, तो एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं इच्छाएं हैं उसके लिए तो कहते हैं लोगों कहते हैं अंत नहीं है, बहुत इच्छाएं हैं। तो अपेक्षाएं अगर हमारी पूरी नहीं, जितनी ज्यादा हमारी अपेक्षाएं होती हैं उतना हैप्पीनेस क्या होगी, कम होगी। और तो इसीलिए जो अपेक्षाएं हैं, हम अपेक्षाओं को हम अपनी कम से कम रखें, किसी के प्रति भी एक्सपेक्टेशन, हमारी खुशी कम तभी होती है जब हमारी किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप मेरे से छोटे हो तो आप ये काम करो, मैंने कोई काम बताया, आपने काम नहीं किया, नहीं हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई तो मेरी खुशी कम हो जाएगी। तो इसीलिए पर्पज ये है कि अपेक्षाएं कम से कम। अपेक्षा के साथ एक शब्द और है, उपेक्षा। तो जब हम किसी की उपेक्षा करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कई बार ऐसा ही होता है, दुनिया में इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो अगर हमारी कोई ऐसी बात है कि हम उपेक्षा किसी की करते हैं तो उसे दुख होता है, उसकी खुशी कम हो जाती है। देखो इसने नेग्लेक्ट किया, ये अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, भले कहे ना कहे लेकिन फीलिंग तो उसे आएगी ना। और अगर हम अपेक्षा रखते हैं किसी को से और अपेक्षा फुलफिल नहीं होती है तो हमारी खुशी कम हो जाती है। इसीलिए हम इन दो शब्दों से बचें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारी खुशी कायम रहे तो एक शब्द अपेक्षा और दूसरा उपेक्षा, इन दो शब्दों से हम बचे रहें, न किसी से एक्सपेक्टेशंस रखें ज्यादा और न किसी की उपेक्षा करें, नेग्लेक्ट करें। इसीलिए कहा है द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो माइंड के अंदर जो होता है, तो माइंड ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, तो माइंड में जो होता है वो चेहरे पर भी आ जाता है। माइंड में किसी के गुस्सा है तो चेहरे पर आंखों से भी लाल हो जाएंगी, आंखों से क्रोध दिखेगा। किसी के प्रति अफेक्शन होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा, वो भी आंखों से झलकता है। ऐसे ही तो फेस जो है इट इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो खुशी जो है झलकनी चाहिए एक्चुअली, जो हमारी रूहानी खुशी है, अंदरूनी खुशी है, नशा है जो बाबा ने कहा है, वो हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तभी तो लोगों को पता चलेगा, अरे इन्हें भगवान मिला है। नहीं तो हम चाहे जितना भी बोलें, जितने लेक्चर करें, लेकिन चेहरे पर अगर वो खुशी नहीं है, उदासी है, गम है, या जो बाबा चाहता है, तो वो अंदरूनी रूहानी खुशी जो है वो हमारी रिफ्लेक्ट अगर नहीं होगी तो खुशी का फायदा क्या। और खुशी जो है ना, ये जो है दैट इज, इसके कुछ रूल्स हैं, कायदे हैं। क्या खुशी का कायदा है कि खुशी को हम जितना वर्णन करेंगे, बांटेंगे, उतना खुशी बढ़ती है। दुनिया के कायदे से उल्टे हैं। दुनिया का कायदे में अगर कोई चीज हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो वो चीज कम होती है, क्योंकि स्थूल चीजें होती हैं वो कम। लेकिन खुशी जो है सटल चीज है, सूक्ष्म चीज है, मन की बात है, तो ये हम जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है। तो इसमें एक इस बात की स्मृति रखनी है कि खुशी को बांटने में हम कंजूसी ना करें। मानो कोई हमारा बच्चा है, एग्जाम में पास हो गया, बस हम सब जगह कहते फिरेंगे खुशी, वो भाई बस पास हो गया, इतने परसेंटेज मार्क हुई, ये हुआ आदि आदि, और वो दूसरा भी कॉन्ग्रेचुलेट करेगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई दुख की बात है, खुशी दुख की बात को अगर हम किसी को यथार्थ रीति से अगर कहेंगे तो दुख कम हो जाता है। मानो हम कार में जा रहे हैं, कार का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद बहुत कार भी डैमेज हो गई, थोड़ी बहुत चोट भी हमें लग गई, लेकिन उसे अगर यथार्थ रीति से कई आएंगे, अरे भाई क्या हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे बोलेंगे तो हमारा गम और दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन कोई आके अगर यथार्थ रीति से बताएगा कि अरे भाई चलो थैंक गॉड आप बच गए, कार कोई चलो थोड़ा डैमेज हुआ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन बढ़ गया, बच गया, जीवन से बड़ी और क्या चीज है। तो यथार्थ रीति से अगर गम को बताया जाता है तो गम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, कोई अगर बीमार भी है ना, उसके पास जाके ये मत बोलो कि अरे तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया, तुम्हें तो ये बीमार बहुत लग रहे हो। नहीं, उसे भी उमंग उल्लास में, अरे कोई बात नहीं, बीमारी तो ये कर्म भोग है, हिसाब किताब है, आज है कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसको भी यथार्थ रीति से अगर शेयर करेंगे तो उसका गम भी, जो कमी है, कमजोरी है, बुखार है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये अंदर के लॉस जो है ना, ये बाहर के कायदे लॉस से डिफरेंट है। जैसे देशों के कायदे होते हैं अलग अलग होते हैं, मानो अमेरिका का कायदा है कार ड्राइविंग का, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है अमेरिका में, गाड़ियां भी लेफ्ट हैंड, लेकिन हिंदुस्तान में कायदा है राइट हैंड ड्राइव, राइट साइड में हम, मतलब नहीं, हमारा ड्राइविंग का वो स्टीयरिंग राइट में होता है, हम लेफ्ट साइड में। तो देश देश के कायदे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर के कायदे ह्यूमन बीइंग हैं, वो कायदे हमारे जो हैं, वो आंतरिक खुशी, आंतरिक नशा, आनंद की जो बात है, उसको हमें उस रीति से देखना है कि हमारी आंतरिक खुशी कितनी रिफ्लेक्ट होती है चेहरे से भी, हमारे वाणी से। और इसीलिए वाणी को कहा गया है भाई, एक वाणी से भी अपना खुशी रिफ्लेक्ट हो, किसी को भी मीठा बोलो, बहुत बोल के गए, ऐसी वाणी बोलिए मन, मीठा बोलिए, दूसरे को भी मीठा लगे। किसी ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। जवान कितनी फ्लेक्सिबल है, हड्डी नहीं है, हड्डी होती कड़क चीज होती तो कड़क शब्द बोलती, लेकिन खुदा ने नहीं बनाई हड्डी की जितनी फ्लेक्सिबल होगी मीठा। लेकिन आदमी तो बड़ा क्रिएटिव है, उसने बोला भले भगवान आपने हड्डी नहीं बनाई, लेकिन मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूंगा, बहुत कड़क बात बोलूंगा, इसीलिए हड्डी से ना क्या होता है, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है, कटक कटु शब्द बोले, कोई भी बात बोली। तो ईश्वर ने तो अपनी कल्पना में बेस्ट पॉसिबल बनाया इंसान को, लेकिन इंसान ने ना उस चीज को उस रीति से नहीं देखा, और इस कारण से वो ऐसा ईश्वर की कल्पना के अनुरूप नहीं बन सका। तभी तो सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आते आते क्या हालत हो गई है। हाँ, ईश्वर के अनुरूप जो कुछ बच्चे बनने का प्रयास करते हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, तो इसीलिए है आज का टॉपिक ना, ब्राह्मण जीवन में आंतरिक खुशी। तो ब्राह्मण अगर बन जाते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो फिर वो ईश्वर के अनुरूप, बाबा की कल्पना के अनुरूप बन जाते हैं, तो सतयुग त्रेता में हम उनके अनुरूप ही जैसा ईश्वर देता है राज करते हैं। इसीलिए खुशी जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। मानो हम घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी में कहीं का दृश्य दिखाया, भाई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लोग मर रहे हैं, आजकल तो अक्सर ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं, और बहुत वहां पर कहीं रॉयट्स हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, खून खराबा। तो हम भले अपने घर में ही बैठे हैं, वो वहीं पर चाहे कोई खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, सब है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें वो खुशी का एहसास नहीं होगा। एयर कंडीशनर है, टीवी देख रहे हैं, परिवार है, सब है, लेकिन ये स्टेट ऑफ माइंड, माइंड उसको ग्रास्प कर रहा है जो माइंड देख रहा है। और इसके विपरीत अगर कोई मानो फिल्म वगैरह देखी, या जिसकी हैप्पी एंडिंग है, सब बहुत खुश में है, आनंद में है, और सब तो बस उस वक्त भले हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ गया, हमें किसी ने कोई चीज लाके नहीं दे दी एक्स्ट्रा, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि उस वक्त हम भी खुशी में आ जाते हैं। तो जो ये खुशी की बात बोलता है, वास्तव में हमें अपने माइंड को ऐसा सेट करना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति इसी बात को कई चीजों में बताती है, कैसे हम खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें। और उसके लिए क्या है, हमने ब्रह्मा बाबा के साथ साथ 6-7 साल रहे, हमने देखा बाबा को। परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं। कई बार बाबा को हम देखते थे, अब 93 उम्र थी, कई बार बाबा को खांसी आती थी और इतना तेज मुरली सुनाते सुनाते भी खांसी आ जाती थी कि आंख भी जैसे गीली जैसी हो जाती थी। वो तो परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति आई, लेकिन बस वो परिस्थिति के वश न होके बाबा अपनी स्वस्थिति को मजबूत करते थे। और क्या, बाबा के बगल में ही लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था। और कई बार बाबा कहते थे, देखो बच्चे, अभी तो ये खांसी आ रही है, पुराना शरीर है, पुराना ये तत्व है, तत्वों का बना हुआ, और ये लेकिन कल बाबा जाके ऐसा निचनो कृष्ण बनेगा और ऐसा दुनिया, वहाँ कोई भी तत्व तमो प्रधान नहीं होंगे, सतो प्रधान होंगे, कोई खांसी, कोई बीमारी, कोई रोग शो कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को भी हमेशा खुशी में रहना चाहिए, स्वस्थिति बच्चों को पावरफुल करनी चाहिए, जिससे परिस्थिति कोई भी आए लेकिन वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारी स्वस्थिति को हम इतनी मजबूत करें कि वो परिस्थिति को डाउन कर ले। और इसीलिए बाबा कहते थे कि बस देखो बच्चे, कल जाके बाबा ऐसा बनेगा। और बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए, कग्गिया मारनी चाहिए, सुना है ना ये, तो बाबा करके दिखाता था, देखो वाह ऐसा, और खुगिया मारो, खुश हो जाओ। तो क्या होगा, परिस्थिति अगर विकराल भी है तो स्वस्थिति को धीरे धीरे शक्तिशाली करते चल, और शक्तिशाली स्वस्थिति होगी तो परिस्थिति कमजोर हो जाएगी। तो बाबा को जब, मुझे याद है 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं बहुत दूर पोस्टेड था, लेकिन बाबा ने अंत समय अपने पास बुला लिया और मुझे कर्मातीत अवस्था देखने का बाबा का मौका मिला। 17 जनवरी की सुबह आसाम से आ गया और आसाम 17 और 18 दो दिन बाबा को कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो उसमें 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ के बस बाबा ने बच्चों से विदा ली। बाबा ने ना बस दरवाजे के पास, जैसे ये दरवाजा है, आते थे और बच्चों से छुट्टी लेकर मुरली, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो होता था। फिर बाबा ऐसे ही चले गए, ऐसा नहीं, मुंह इधर बच्चों की तरफ ही होता था और एक एक कदम उल्टा चलते हुए गेट तक जाते थे कि अरे मैं बच्चों को पीठ कैसे दिखाऊंगा, बच्चे तो डबल महाराजा हैं, आत्मा भी पवित्र शरीर भी सतयुग में। तो ये बाबा, शिव बाबा तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा परम धाम का मालिक है, सतयुग का मालिक नहीं बन सकता। तो इतना आदर, इतना सत्कार, इसीलिए बाबा का चेहरा हमेशा खिलाफ देखो, किसी को भी खुशी की बात करोगे, आदर दोगे, सत्कार दोगे, बहुत खुशी का अनुभव होगा, क्रोध होगा, किसी का अपमान होगा, उस समय अपनी स्थिति भी वैसी हो जाती है, तो चेहरा भी जैसे देखने लायक नहीं होता। तो वहां बाबा ने जो बताया, तो बाबा ने यही बताया उसकी बात कि बच्चों को ऐसी स्थिति में बनाए। हाँ आ जाए, तो इसीलिए बस मैं तो यही कहूंगा, जो बाबा ने अंत समय में 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, उस समय ऐसी स्थिति थी बाबा की कि बस मन जीते जगत जीत एक तरफ और प्रकृति जीते जगत जीत। मन की भी स्थिति ऐसी कि जो हमारे मन के भाव थे बाबा जान लेते थे, और प्रकृति यानी शरीर का भी बाबा ने ऐसा करा कि वो शरीर बाबा का रखा रहा, 18 जनवरी को छोड़ा, 21 जनवरी को संस्कार किया गया। लेकिन अभी दीदी आ गए हैं, दीदी आ गए ना, हाँ, तो बस इसलिए अभी हम लोग छुट्टी करते हैं और हम सब लोग उसी स्थिति में रहें। तो थोड़ा ऐसा जो सुना उसका वर्णन।